पृष्ठ संख्या 159। सीलर के अनुसार कुछ इतिहासकार नैतिक न्याय की मान्यता को अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इतिहासकार समसामयिक सामाजिक मूल्यों के परिवेश में नैतिक न्याय देता है, परंतु इतिहास में कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं जिसे सार्वकालिक तथा सर्वव्यापी कहा जा सकता है। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या में ऑगस्टाइन तथा कार्ल मार्क्स का विचार तर्कसंगत है। दोनों ने अपने युग के सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्याख्या की है। उनके तर्क को सार्वकालिक कहा जा सकता है। अतः नैतिक न्याय के संबंध में कहा जा सकता है कि इतिहासकार के नैतिक न्याय में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका स्वरूप सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक होता है। इस प्रकार इतिहासकार का नैतिक न्याय सर्वथा यथार्थ होता है। इसलिए एक्टन इतिहासकारों ने इतिहासकारों से कठोरतम नैतिक न्याय की अपेक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है तो उसे कठोर दंड देकर वर्तमान के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उसके कार्यों की सर्वाधिक निंदा करनी चाहिए। मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में मात्र राजगद्दी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा तथा ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की। मोहम्मद तुगलक ने सुनियोजित षड्यंत्र द्वारा अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की हत्या की। इसी प्रकार शाहजहां ने अपने भाई खुसरो तथा औरंगजेब अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। औरंगजेब ने अपने संभावित प्रतिद्वंदी भाइयों द्वारा मुराद तथा शाह सुजा की निर्मम हत्या करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। यही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक ने अपदस्थ प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में एक्टन ने कहा है, किसी भी मनुष्य तथा कारण को इतिहास में अमर दंड से बचने न दो, क्योंकि गलतियों के संबंध में कठोर दंड देने का अधिकार इतिहासकार को प्राप्त है। इस प्रकार इतिहासकार इक्विनास इस अधिकार को प्राप्त कर अधिक आत्मसंतोष की अनुभूति करते हैं। अतीत के व्यक्तियों के संबंध में वे कठोर दंड देने में संकोच का अनुभव नहीं करते थे। एक्टन का अभिमत है कि मृत व्यक्तियों को सहानुभूति की अपेक्षा कठोर दंड देना ही उचित है। कठोर दंड देने का एकमात्र अभिप्राय उनकी गलतियों को शाश्वत बनाने से रोकना है। यदि अनिश्चितता की स्थिति है तो इतिहासकार को भूल नहीं करनी चाहिए। छूट के दंड में कठोरता की अत्यधिक आवश्यकता है। यह मनोवृत्ति अभी भी अनपेक्षित रूप में पृष्ठ संख्या 160 इतिहासकारों में बनी हुई है। 1935 में मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। उसे प्रोफेसर टॉनबी ने जानबूझकर किया गया व्यक्तिगत पाप कहा है। यदि इतिहासकार के न्याय में समसामयिक मूल्य की आवश्यकता है तो आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति जीवित हैं जो हिटलर, स्टालिन तथा सीनेटर मैकार्थी की दमनकारी नीतियों के शिकार बने थे। त्वचे ने इतिहास के न्याय में समसामयिक मापदंड की आवश्यकता की अनुभूति की है। जर्मनी के लोग आज भी हिटलर के चरित्र की निंदा करते हैं। यही नहीं, जिस युग ने हिटलर को जन्म दिया उस पर किए गए इतिहासकार के नैतिक न्याय का अधिकांश लोग समर्थन करते हैं। एक्टन की दृष्टि में इतिहासकार केवल ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन करता अथवा उनका व्याख्या करता ही नहीं होता, वह नैतिकता का संरक्षक भी होता है। उसने क्रेटन को एक पत्र में लिखा था कि मनुष्य तथा घटनाओं पर निर्णय देते समय वह अपने आचार शास्त्र को धर्म, राजनीति तथा राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वे अपने नैतिक न्याय संबंधी आचार शास्त्र समसामयिक समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके नैतिक न्याय में समसामयिकता के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ विद्वानों की अवधारणा है कि इतिहासकार को व्यक्ति की अपेक्षा व्यवस्था के संबंध में नैतिक न्याय देना चाहिए। घृणित दास प्रथा तथा पूंजीवाद के कारण अनेक लोगों को कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ा और आज भी पड़ रहा है। मैक्स वेबर की दृष्टि में इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य दास प्रथा तथा पूंजीवाद व्यवस्था पर नैतिक न्याय देना है, न कि उन व्यक्तियों पर जो इन व्यवस्थाओं के निर्माता थे। इसका तात्पर्य है कि परमाणु अस्त्र को बनाने वाले की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन परमाणु अस्त्रों के निर्माणकर्ता उतने ही उत्तरदायी हैं जितने इनका प्रयोग करने वाले। अतः इतिहासकार को नैतिक न्याय देते समय एक ही निंदा तथा दूसरे की स्तुति नहीं करनी चाहिए। इतिहास को महान उपलब्धि के विषय में एक्टन की अवधारणा थी कि इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि नैतिक न्याय संबंधी अंतःचेतना को विकसित, परिपक्व तथा सशक्त करना है। एक्टन ने मोर स्टीफन को एक पत्र में लिखा था कि नैतिक न्याय के संबंध में इतिहासकार को एक केंद्र बिंदु निश्चित करना चाहिए। एक वैज्ञानिक के लिए केंद्र बिंदु के अभाव में भ्रष्टाचार, पागलपन, मदांधता तथा विश्वासघात के संबंध में नैतिक न्याय देना कठिन होगा। वास्तव में इतिहासकार एक पृष्ठ संख्या 161 न्यायाधीश अन्याय का सुधारक, निरपराधियों पर किए गए अत्याचार का प्रतिशोधी होता है। वह नैतिकता का संरक्षक है। संरक्षक के रूप में उसका कर्तव्य नैतिकता का पालन करना, विकास करना तथा उसके अन्य हितों का ध्यान रखना है। नैतिक न्याय के संबंध में एक्टन का अपना बड़ा ही आकर्षक सिद्धांत था। उनके अनुसार जब इतिहासकार नैतिक समस्याओं के प्रश्न पर समझौता करता है तो इतिहास विवादपूर्ण विषयों के निर्णायक होने के अस्तित्व को खो देता है। नैतिक मापदंड के समर्थक इतिहासकार को दबाने के लिए पृथ्वी की संपूर्ण शक्ति एवं धर्म सतत प्रयत्नशील है। एक्टन के विचार में यथार्थता है, क्योंकि कोई भी शासक नहीं चाहता है कि उसके बुरे कार्यों के संबंध में इतिहासकार निर्णय दे। मोहम्मद तुगलक पितृहंता था, परंतु जियाउद्दीन बर्नी ने मात्र इतना ही कहा है कि ईश्वर यथार्थता को जानता है। अकबर ने घुस द्वारा असीरगढ़ किले को जीता था, परंतु अबुल फजल ने लिखा है कि महामारी फैलने के कारण किले पर विजय हुई। बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख का प्रकाशन अकबर के जीवन काल में न करा सका। पोप के कारण कोपरनिकस तथा गैलीलियो को अनेक यातनाएं सहनी पड़ी। निरंकुश तानाशाही शासन काल में स्वतंत्र विचार के प्रकाशन पर प्रतिबंध रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की पार्थिव शक्तियां धर्म तथा नैतिकता को दबाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। नैतिक विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार मात्र इतिहासकार को ही प्राप्त है। एक्टन ने कहा है कि ऐतिहासिक विज्ञान का यह कार्यालय मनुष्य तथा वस्तुओं की एकमात्र निष्पक्ष कसौटी नैतिकता को कायम रखना है। इतिहासकारों का समग्र समाज इस तर्क में विश्वास करता है कि जैसे कैसे 15वीं सदी के पोप को अपराध से मुक्त किया जा सका। एक्टन ने कहा है कि नैतिक प्रश्न के संबंध में गलत विचारों को प्रसारित करने की अपेक्षा मृत व्यक्तियों के प्रति कठोर तथा अन्यायी होना ही उचित प्रतीत होता है। एक्टन के जीवन की उत्कृष्ट अभिलाषा इतिहास को नैतिक न्याय का सर्वोच्च न्यायालय बनाने की थी। नैतिक न्याय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी रक्षा करना उस सर्वोच्च न्यायालय का पुनीत कर्तव्य है। उनका प्रसिद्ध वाक्यांश है कि इतिहास का कार्य शासन करना है। संभवतः उनका अभिप्राय यह था कि वे इतिहास कार्य को कार्यकारिणी, न्यायपालिका तथा विधान का प्रधान मानते थे। इतिहास का सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान पृष्ठ संख्या 162 न्यायाधीश ही नहीं है, वह शासक भी है, जिसका कर्तव्य नैतिक न्याय की रक्षा करना है। उनकी सभी ऐतिहासिक कृतियां नैतिकता, स्वतंत्रता तथा प्रगति संबंधी विचारों से ओतप्रोत है। एक्टन आजन्म नैतिक न्याय के पक्षधर बने रहे। उनका अटूट विश्वास था कि इतिहास विज्ञान के कार्यालय का एकमात्र अभिप्राय मनुष्य तथा घटनाओं से संबंधित नैतिकता की निष्पक्ष कसौटी की रक्षा करना है। इस आत्मचेतना को विकसित, परिपक्व तथा सशक्त करना ही इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नैतिक न्याय का विरोध करने वाले इतिहासकारों के विचारों से एक्टन अत्यंत दुखी थे। नैतिक न्याय के प्रति उनकी आंतरिक भावना इतनी प्रबल थी कि वे कहते थे कि जब इतिहासकार नैतिक विधान में जालसाजी करता है तो वह शासन करने के अधिकार को खोकर सेवक बन जाता है। समाज प्रदत्त शासन करने के अधिकार को इतिहासकार नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उसका पुनीत कर्तव्य शासन करना है, सेवा करना नहीं। इतिहासकार नैतिक मामलों में सर्वशक्तिमान व्यक्ति होता है। शक्ति संचय तथा उसका यथोचित प्रयोग ही इतिहासकार का उद्देश्य होना चाहिए। वे प्रायः कहते हैं कि कहते थे कि 15वीं सदी के पोप तथा निरंकुश शासकों के अत्याचार को कैसे भुलाया जा सकता है। अपराधों के लिए उन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। अतीत के अपराधियों को यथोचित दंड देने का अधिकार इतिहासकार को ही प्राप्त है। एक्टन ने स्पष्ट कहा है कि नैतिकता के प्रश्न पर मृत व्यक्तियों के प्रति कठोर तथा अन्यायी होना सर्वथा उचित है। उनके अपराधपूर्ण कार्यों एवं विचारों को प्रचारित करने होने से रोका जाए। प्रत्येक इतिहासकार की ईमानदारी तथा निष्ठा इसी सिद्धांत के कर्तव्य पालन में है। एक्टन की अटूट श्रद्धा तथा विश्वास इतिहास के नैतिक न्याय में था। उन्होंने जीवन पर्यंत इतिहास के नैतिक न्याय को सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित करने का सतत प्रयास किया। इस संबंध में उन्हें केवल यही पश्चाताप था कि इस प्रश्न को लेकर उनके तथा गुरु प्रोफेसर डॉलिंजर के बीच तीव्र मतभेद था और मतभेद की यह खाई जीवन पर्यंत नहीं भरी जा सकी। यद्यपि उनके इतिहास संबंधी संपूर्ण ज्ञान का एकमात्र श्रेय उनके गुरु प्रोफेसर डॉलिंजर को ही है, परंतु एक्टन नैतिक न्याय के प्रति समझौता करने के पक्ष में कभी नहीं थे। उन्होंने अपने गुरु से स्पष्ट कहा था कि इतिहास की पृष्ठ संख्या 163 नैतिक गरिमा को गिराने की अपेक्षा अनैतिहासिक हो जाना अच्छा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक्टन इतिहास में नैतिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। इस प्रकार समाज में इतिहासकार की भूमिका न्यायाधीश की तरह है। सर इसाया बर्लिन ने नैतिक न्याय के संबंध में फिर जेम्स स्टीफन को उद्धृत किया है। उनके अनुसार दंड संहिता का उद्देश्य अपराधियों के प्रति घृणा में नैतिकता निहित है। अपराधी के कठोर दंड की सजा में जनसामान्य की घृणा की अभिव्यक्ति होती है। अपराधी के प्रति कठोर दंड में ही जनसामान्य का आत्मसंतोष होता है और यही स्वस्थ परंपरा है और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इतिहासकार नैतिक न्याय नहीं दे सकता है। कुछ विद्वानों की अवधारणा है कि इतिहासकार को नैतिक न्याय देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दर्शन तथा आचार शास्त्र इतिहास के आवश्यक अंग नहीं है। प्रोफेसर नोल्स ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहासकार न्यायाधीश नहीं होता और फांसी पर चढ़ने वाला न्यायाधीश तो हो ही नहीं सकता और फांसी पर चढ़ाने वाला तो न्यायाधीश हो ही नहीं सकता। मेंडेलबॉम के अनुसार इतिहासकार जब अतीतकालिक चरित्रों अथवा घटनाओं के संबंध में नैतिक न्याय देता है तो वह इतिहासकार नहीं अपितु आचार शास्त्री बन जाता है। शीलर का अभिमत है कि न्याय देने की प्रक्रिया का संबंध जीवित जगत से है और न्याय सामाजिक परिवेश में होता है, क्योंकि मनुष्य का दृष्टिकोण सामाजिक तत्व तथा द्वारा प्रभावित होता है। प्रत्येक युग में समसामयिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार इतिहास लेखन की अनुभूति की गई है। अतः इतिहासकार के निर्णय का स्वरूप प्रत्येक युग में सामाजिक मूल्य संप्रयुक्त होता है। क्रोचे का कथन भी इस संबंध में यथोचित प्रतीत होता है। वादी उस महान अंतर को भूल रहा है कि हमारे न्यायाधिकरण आज भी आज के न्यायाधिकरण हैं, जिनका प्रावधान जीवित सक्रिय अपराधी व्यक्तियों के लिए हुआ है, जबकि दूसरे लोग अपने समय के न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं और दोबारा दंडित या मुक्त नहीं किए जा सकते। वे किसी भी न्यायाधिकरण के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि वे अतीत की शांति में पहुंच चुके हैं और कोई भी निर्णय उन पर कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, सिवाय उस फैसले के जो उनके कार्यों के मर्म में प्रवेश करने और उन्हें समझने में सहायक हो। जो लोग इतिहास लिखने के नाम पर न्यायाधीशों के रूप में कार्य करते हैं, किसी को पृष्ठ संख्या 164 सजा दी और किसी को अपराध से मुक्त किया, क्योंकि वह समझते हैं कि यह इतिहास का कार्य है। ऐसे लोगों के पास ऐतिहासिक ज्ञान की कमी होती है। यदि न्याय के संबंध में एक्टन के विचार को मान्यता प्रदान की जाए तो इसका अभिप्राय हेगेल के राज्य सिद्धांत को स्वीकार करना होगा और इस राज्य सिद्धांत के अनुसार शासक के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। हेगेल ने स्पष्ट कहा है कि मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति राजाज्ञा के पालन में है। इस प्रकार इतिहासकार नैतिक जगत में अपने समसामयिक समाज से अपेक्षा करेगा कि उसके नैतिक न्याय को सभी एक स्वर से स्वीकार करें। वह स्वयं नैतिकता का रक्षक बनकर दैवीय अधिकार का दावा करेगा। उसके विरोध का तात्पर्य ईश्वर का विरोध करना होगा। एक्टन ने कहा है कि इतिहासकार के नैतिक न्याय संबंधी अधिकार को दबाने के लिए विश्व की पार्थिव शक्तियां तथा धर्म सतत प्रयत्नशील हैं। इतिहासकार प्रभुता संपन्न व्यक्ति नहीं है, वह समाज का सेवक है। नैतिक न्याय देने के पहले उसे विचार करना चाहिए कि क्या उसे आचार शास्त्र को सार्वभौमिक मान्यता दी जा सकती है। प्रत्येक युग की अपनी दंड विधाएं होती है। अतीत कालिक व्यक्तियों के संबंध में अपने युग की प्रतिमान दंड विधाओं द्वारा दंड देना न्यायोचित नहीं है। यदि संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है तो इतिहासकार का न्याय भी अपने युग की सामाजिक परंपरा के अनुसार होता है। इतिहासकार का न्याय निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी रुचि और सामाजिक मूल्य के अनुसार न्याय देता है। ऑगस्टीन द्वारा रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या तथा कार्ल मार्क्स द्वारा रोमन साम्राज्य के आर्थिक कारणों की व्याख्या उचित है, परंतु निष्पक्ष नहीं है। रिकर्ट का कथन है कि संपूर्ण सामाजिक मूल्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, जो सत्य से परे है। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं, उसे सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक कहना अनुचित है। किसी समाज के लिए दास प्रथा, निरंकुश राजतंत्र, राज्यतांत्रिक, प्रबुद्ध युग, प्रजातंत्र, पूंजीवाद, साम्यवाद की अपनी सामाजिक मान्यताएं तथा मूल्य रहे हैं। उन्हें सभी युगों के लिए उपयोगी नहीं कहा जा सकता है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य अतीतकालिक यथार्थ जगत के गतिशील परिवर्तनों, परिवर्तन के नियमों एवं परिस्थितियों का व्याख्यात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। उसे ऐतिहासिक गवेषणा तथा व्याख्या से मानव ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। इतिहास का पृष्ठ संख्या 165। उच्चतम लक्ष्य यही है। इतिहास न तो विवादास्पद विषय का मध्यस्थ है और न संपूर्ण पर्यवेक्षित जगत का शासक। वह ईश्वर के सेवकों का सेवक तथा परिश्रमशील नौकरों में एक नौकर होता है। इतिहासकार को न्यायाधीश अथवा जूरी समझना एक महान भूल है। वह साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला एक साक्षी होता है। E.H. कार ने तो स्पष्ट कहा है कि इतिहासकार न्यायाधीश नहीं और मृत्युदंड देने वाला न्यायाधीश कदापि नहीं हो सकता है। किट्सन क्लार्क का अभिमत है कि नैतिक न्याय देने के पहले इतिहासकार को स्मरण रखना चाहिए कि बहुत से व्यक्ति अपने समसामयिक पुरुषों को समझने में असमर्थ थे, तो अतीत के पुरुषों को कैसे समझ सकते हैं या उनके संबंध में न्याय दे सकते हैं। सर नेविल चैम्बरलेन, लेन हिटलर तथा उसकी आक्रामक नीति को समझने में पूर्ण विफल रहे तथा अमेरिका के राष्ट्रपति F.D. रूजवेल्ट अपने तथा स्टालिन के बीच अंतर को समझने में असफल रहे। वास्तविकता तो यह है कि वे सभी समसामयिक थे। जब हम समसामयिक व्यक्तियों की नीतियों को जानने में असमर्थ हैं, तो अतीतकालिक व्यक्तियों की नीतियों की जानकारी कर पाना अत्यंत कठिन है। ऐसी परिस्थिति में उनके प्रति नैतिक न्याय देना इतिहासकार की स्वप्न लोकीय कल्पना है। इतिहासकार को सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के अधिकारों से विभूषित करने का तात्पर्य उसे ईश्वर के समकक्ष स्वीकार करना होगा। ऐसी परिस्थिति में वह दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर न्याय प्रदान करेगा। वह सर्वाधिक कार प्राप्त 15वीं सदी का पोप बनकर किसी को क्षमादान कर स्वर्ग भेजेगा और किसी को दंडित कर नरक भेजना चाहेगा। वह एक निरंकुश शासक की भांति दैवीय अधिकारों की आड़ में अनेक प्रकार का अन्याय करेगा। वह दावा करेगा कि उसका विरोध ईश्वर का विरोध होगा। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार इतिहास की अवधारणा को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाकर अपने अधिकार का दुरुपयोग करेगा। इतिहास में नैतिक न्याय संबंधी यह अवधारणा एक अंधविश्वास है। एक्टन का कथन है कि इतिहास का नैतिक स्तर गिराने की अपेक्षा अनैतिहासिक होना अच्छा है, उपहासास्पद प्रतीत होता है, क्योंकि इतिहासकार तथा इतिहास की कुछ सीमाएं होती हैं, उनका उल्लंघन करना अनुचित प्रतीत होता है। इतिहास का अभिप्राय अतीत के व्यक्तियों के चरित्र एवं आचरण की व्याख्या है। डेनियल ने भी स्वीकार किया है कि इतिहासकार का आचार शास्त्र सार्वभौमिक नहीं है और न तो इसका प्रचलन पृष्ठ संख्या 166 सार्वकालिक है। इतिहासकार का नैतिक न्याय विषय वस्तु पर निर्भर करता है। यदि ऐतिहासिक विधाएं सार्वभौमिक तथा शाश्वत नहीं हो सकती, तो इतिहासकार के नैतिक न्याय को कैसे शाश्वत तथा सार्वभौमिक कहा जा सकता है? इतिहास या आचार शास्त्र इतिहास में निहित होता है, इतिहासकार में नहीं। ईएचकार के अनुसार न्याय देना इतिहासकार के अधिकार की सीमा से बाहर है। इतिहास में यातनाएं स्थानीय होती है। इतिहास में प्रत्येक महान विजयों के साथ पराजय की स्थितियां भी होती हैं। इतिहासकार के पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि वह निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके कि कितने लोग लाभान्वित हुए और कितने को कष्ट उठाना पड़ा। इतिहासकार को ऐसी उलझनों में पड़कर नैतिक न्याय नहीं देना चाहिए। इतिहास में नैतिकता का प्रतिरूपण मूर्खता का परिचायक है। ऐतिहासिक व्याख्या में किसी को क्षमा करने तथा किसी की निंदा करने के लिए स्थान नहीं है। समाज में पाप और पुण्य की समस्या इतिहास की समस्या नहीं है। नैतिक दायित्व इतिहास जगत के बाहर है। नैतिक समस्या को लेकर इतिहासकार अपने को सीमा के बाहर एक पैर पर खड़ा पाएगा और यह स्थान उसकी सीमा से बाहर होगा। एक विशेष समाज तथा स्थान पर विशेष मूल्य अथवा आदर्श का जन्म होता है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय या प्राकृतिक नियमों का स्वरूप का एक काल से दूसरे काल और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बदलता रहता है। ईएच कार ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास वह है जो मूल्यों में इतिहास शास्त्रित चरित्र को जानता है, न कि वह जो अपने मूल्यों के लिए इतिहासातीत वस्तुवादिता का दावा करता है। इतिहासकार एक सामाजिक अभिकर्ता है। उससे बौद्धिक निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। उसे बचपन के संस्कारों को भूलकर शिक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐतिहासिक व्याख्या के अपने नियम हैं। उनके अनुकरण तथा इतिहास लेखन में उनके क्रियान्वयन की इतिहासकार से अपेक्षा की जाती है। पेरान ने हुई जिंगा की आलोचना करते हुए कहा है कि उसने धार्मिक उत्पीड़न तथा पूंजीवाद के दोषों पर प्रकाश नहीं डाला, परंतु पेरान यह नहीं समझ सके कि इतिहासकार का कार्य अतीतकालिक घटना का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना है, न्याय देना नहीं। ऐतिहासिक न्याय को समाज के व्यक्तियों के लिए छोड़ देना पृष्ठ संख्या 167 उचित तथा श्रेयस्कर होता है। इतिहासकार से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह समाज के इच्छानुसार इतिहास रूपी कपड़ा बुनकर तैयार करे। जब तक इतिहासकार अपने को निर्दोष तथा निष्पक्ष नहीं सिद्ध करता, उसका नैतिक न्याय व्यर्थ है। कार्य की निंदा करना सरल है, परंतु संपूर्ण मानव समाज की निंदा कैसे की जा सकती है? क्या इतिहासकार कह सकता है कि 16वीं सदी के सभी मनुष्यों को धार्मिक उत्पीड़न से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक यातना राज्य का कर्तव्य था? क्या इतिहासकार संपूर्ण मानव समाज की निंदा कर सकता है कि मनुष्य ने अपने विवेक से तत्कालीन धार्मिक नियम तथा व्यवस्था का विरोध नहीं किया? क्या इतिहासकार मेरी ट्यूडर की धार्मिक उत्पीड़न नीति की आलोचना करेगा और कैथरीन द मेडिची ने मेडिची के धार्मिक उदारवाद की प्रशंसा करेगा? मेरी अपने धार्मिक विचारों में उतनी ही रूढ़िवादी थी जितना कैथरीन द मेडिची धर्म के प्रति उदासीन तथा अत्यधिक उदारवादी। बटरफील्ड ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहासकार का कार्य मेरी के धार्मिक उत्पीड़न तथा कैथरीन द मेडिची की उदारवादी धार्मिक नीति की निंदा अथवा प्रशंसा करना नहीं है। उसका कार्य धार्मिक उत्पीड़न का वर्णन करना है जिसके लिए मेरी उत्तरदायी थी। इतिहासकार का कार्य फ्रांसीसी कैथरीन द मेडिची के उन प्रयासों का वर्णन करना है जिनके द्वारा वह उदारवादी वातावरण की पृष्ठभूमि तैयार करना चाहती थी। उस व्याख्या का तात्पर्य निंदा अथवा प्रशंसा करना नहीं। प्रायः ऐतिहासिक विवेक के अभाव में इतिहासकार अपने अस्तित्व के मूल कर्तव्य को भूल जाता है। उसकी व्याख्या का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि मेरी ट्यूडर ने धार्मिक उत्पीड़न क्यों किया और कैथरीन द मेडिची क्यों नहीं चाहती थी। इतिहासकार को नैतिक जगत में भ्रमण नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य कर्तव्य घटना का यथार्थ चित्रण करना है। नैतिक न्याय में आस्थावान इतिहासकार को प्रायः विक्षिप्तता का सामना करना पड़ता है। उसकी अंतश्चेतना उसे इतिहास के नियम के विषय में सोचने के लिए बाध्य करती है। डेनियन के अनुसार अंतश्चेतना तथा आचार शास्त्रीय विवेक एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतिहासकार के ऊपर अंतश्चेतना का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस माध्यम से वह अच्छे तथा बुरे कार्यों को पहचान सकता है। इतिहासकार ऐतिहासिक नियमों के पालन के लिए बाध्य है। इतिहासकार का नैतिक न्याय उस पर पृष्ठ संख्या 168 नहीं किंतु उसके विषय पर निर्भर करता है। यह समाजशास्त्री का कर्तव्य है कि वह मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करे। आचार शास्त्री उसे उससे नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है और कार्यों के मूल्य पर निर्णय दे सकता है, परंतु बुनने वाले जुलाहे को हम यह आदेश नहीं दे सकते कि वह कपड़ा काटकर हमारे लिए कोट सिले। अतः समाज इतिहासकार से यह अपेक्षा नहीं कर सकता है कि वह सदैव उसकी रुचि के अनुसार इतिहास लिखे। वह न्याय दे सकता है, परंतु उसे सदैव याद रखना चाहिए कि इतिहास लेखन तथा आचार शास्त्र इतिहास में निहित होता है, इतिहासकार में नहीं। नैतिक न्याय में विश्वास करने वाले इतिहासकार इतिहास में परा ऐतिहासिक मापदंड बनाना चाहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि इतिहास में मापदंड का निर्माण गैर ऐतिहासिक होता है। यही नहीं, यह इतिहास की सार वस्तु के विपरीत है। मानदंड धर्माचार्यों तथा आचार शास्त्रियों के लिए होता है, इतिहास के लिए नहीं। इतिहास एक आंदोलन है और वह आंदोलन में ही अंतर निहित होता है। इसी कारण इतिहासकार अपने नैतिक निष्कर्ष को प्रगतिशील अथवा क्रिया प्रतिक्रियाशील जैसी तुलनात्मक शब्दावली भी देते हैं। अच्छी या बुरी जैसी निर्णयात्मक और समझौता विहीन शब्दावली इतिहास के शब्दकोश में नहीं है। एक्टन ने एक स्थान पर कहा है कि इतिहासकार का कार्य राजनीतिज्ञों तथा शासकों के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालना अथवा नैतिक न्याय देना नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने द एनहिन को राज्य के हित में मृत्युदंड दिया। व्यक्तिगत हित की अपेक्षा राज्य का हित सर्वोपरि होता है। इसी प्रकार मुगल सम्राट अकबर ने घुस देकर असीरगढ़ के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। शेरशाह ने रायसेन के शासक पुनर्मल को सुरक्षा का आश्वासन देकर उस पर आक्रमण कर दिया। नैतिकता की दृष्टि से अकबर तथा शेरशाह के कार्य निंदनीय है, परंतु उनका कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं अपितु राज्य के हित में है था, अतः उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि महान वैज्ञानिक आइंस्टीन अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने स्त्री बच्चों के प्रति क्रूर था, स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना के अनुसार पिता का व्यवहार उसकी माता के प्रति क्रूर था, तो नैतिकता की दृष्टि से आइंस्टाइन तथा स्टालिन दोनों का व्यवहार निंदनीय है। क्या नैतिक स्तर पर उनकी निंदा उनकी महान उपलब्धियों को कम कर सकती है? संभवतः नहीं। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार को व्यक्तिगत जीवन संबंधी तथ्यों पर नैतिक न्याय नहीं देना चाहिए। पृष्ठ संख्या 169। इतिहासकार का कार्य अतीत के यथार्थ जगत का प्रस्तुतीकरण है। यही नहीं, अतीत के गतिशील परिवर्तनों के नियमों की गवेषणा इतिहासकार से अपेक्षित है। नैतिक प्रश्नों को प्रधानता देने का तात्पर्य इतिहास चिंतन की प्रक्रिया का परित्याग करना होगा। इतिहासकार अपने ऐतिहासिक गवेषणा तथा व्याख्या से मानव ज्ञान की अभिवृद्धि करता है। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास विवादपूर्ण विषयों का मध्यस्थ तथा संपूर्ण पर्यवेक्षित जगत का शासक नहीं अपितु ईश्वर के सेवकों का सेवक एवं परिश्रमशील सेवकों में परिश्रमशील सेवक है। इतिहासकार न्यायाधीश तथा जूरी नहीं बल्कि साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला एक साक्षी है। इतिहास अच्छे बुरे कारणों का समान रूपेण सेवक है। उसे संदेहास्पद का सेवक कहना यथोचित प्रतीत होता है। नैतिकता इतिहास के बाजार में निर्गमन तथ्य की वस्तु नहीं है। अतीत का प्रस्तुतीकरण जितना सरल समझा जाता है उतना सरल नहीं है। नैतिकता के प्रबल समर्थक एक्टन ने जीवन के अंत में अनुभव किया कि इतिहास में नैतिक न्याय के लिए स्थान नहीं है। मृत्यु सैया पर पड़े हुए उन्होंने अपने पुत्र के साथ अंतिम वार्तालाप में कहा था कि उनकी तरह उसे नैतिक न्याय नहीं देना चाहिए, मानवीय कमजोरियों के प्रति उसे सावधानी बरतनी चाहिए। एक्टन जीवन पर्यंत पश्चाताप करते रहे कि नैतिक प्रश्नों को लेकर उनके तथा उनके गुरु प्रोफेसर डालिंजर के बीच मतभेद की खाई इतनी गहरी हो गई कि वे समझौता न कर सके। जीवन के अंत में उन्होंने यह अनुभव किया था कि इतिहास में नैतिकता का समर्थन करके उन्होंने सबसे बड़ी भूल की है। रेनियर ने भी इतिहास में नैतिक न्याय का विरोध किया है। प्रत्येक इतिहासकार अपने युग की विचारधाराओं द्वारा प्रभावित होता है, अतः उससे निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं की जा सकती। निष्पक्ष न्याय के अभाव में इतिहासकार को नैतिक न्याय नहीं देना चाहिए। बौद्धिक निष्ठा के अभाव में इतिहास अपने मूल अस्तित्व को खोकर उपन्यास अथवा काल्पनिक कथा का स्वरूप धारण कर लेता है। इतिहास की कोई अपनी अभ्रांत कसौटी नहीं है, वह अपने सेवक के मस्तिष्क तथा हाथों में विकसित होता है। यह इतिहासकार की अंतःचेतना में विद्यमान रहता है। इतिहास लेखन की नैतिकता व्यक्तिगत होती है, इसे क्रमबद्ध तथा विधि युक्त भी कहा जा सकता है, जिसका स्वरूप पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत होता है। पृष्ठ संख्या 170। गिबन जैसे इतिहासकारों ने इतिहास के बगीचे में नैतिकता का वृक्षण रोपण तो किया, परंतु उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि इन वृक्षों के फलों का क्रय विक्रय बाजार में होगा कि नहीं। यही कारण है कि इंग्लैंड में नैतिकता के प्रबल समर्थक इतिहासकारों का लोप हो गया। विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त इतिहासकारों के से यह अपेक्षा की जाती है कि इतिहास लेखन में वे वस्तुनिष्ठ नियमों का पालन करें। इन नियमों की उपेक्षा का अभिप्राय इतिहास अनुशासन की उपेक्षा होगी। किसी भी व्यावसायिक रूप अथवा विनोद के लिए इतिहास चयन की बाध्यता नहीं है। इतिहास के नियमों तथा अनुशासन में अटूट श्रद्धा तथा विश्वास रखने वाली व्यक्तियों को ही इतिहास लेखन स्वीकार करना चाहिए। इतिहासकार के लिए व्यावहारिक आचार शास्त्र होता है। एलपी स्मिथ की अभिव्यक्ति है कि अपने मित्रों से उनकी सामाजिक त्रुटियों को मत कहिए, वे अपनी त्रुटियों को सुधारेंगे परंतु आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। इतिहास लेखन इतिहासकार की इच्छा पर नहीं अपितु इतिहास के नियमों तथा उनके अनुशासन पर निर्भर करता है। यदि इतिहास एक निरंतर प्रक्रिया है तो इतिहासकार को अतीत के मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की प्रशंसा एवं निंदा करने का अधिकार नहीं है। उसका पुनीत कर्तव्य अतीत का यथार्थ प्रस्तुतिकरण है। आचार शास्त्र का अपना कोई नियम नहीं है, यह विषयनिष्ठ एवं उपदेशात्मक होता है। इतिहास का स्वरूप उपदेशात्मक नहीं होना चाहिए, अतः इतिहासकार को नैतिक न्याय नहीं देना चाहिए। समाज में कुछ लोगों का कष्ट दूसरों के लिए लाभप्रद होता है। 19वीं सदी में उद्योगीकरण का परिणाम अफ्रीका तथा एशिया में उपनिवेशवाद का विस्तार था। प्रगतिवादी इतिहासकार इसे यूरोप के विकास में योगदान मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे एशिया तथा अफ्रीका का शोषण मानते हैं। नैतिक न्याय के आधार पर इसकी आलोचना करते हैं। इस तथ्य को स्वीकार करने का अभिप्राय चेस्टरटन तथा बेलाग के विचारों को मान्यता प्रदान करना होगा। ब्रिटिश इतिहासकारों का अभिमत है कि आधुनिक भारत ब्रिटिश शासन की संतान है। इसी तरह आधुनिक चीन को पाश्चात्य साम्राज्यवाद की उत्पत्ति माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि इतिहास सभी देवियों में सबसे क्रूर है और अपना विजय रथ शवों के ढेर पर चलाती है, न केवल युद्ध बल्कि शांतिपूर्ण आर्थिक विकास में भी। दुर्भाग्यवश हम स्त्री पुरुष इतने मूर्ख हैं कि वास्तविक प्रगति में भी हम इसे प्राप्त करने का साहस नहीं करते। जब तक सीमा के बाहर अनेक लोग पीड़ित न हो, प्रत्येक व्यक्ति संस्था घटना तथा व्यवस्था के अच्छे तथा बुरे दो पक्ष होते हैं। एक्टिन जैसे पृष्ठ संख्या 171। कुछ इतिहासकारों ने प्रगति का इतिहास लिखा तो अनेक इतिहासकारों ने प्रतिवाद के रूप में प्रगति की कीमत तथा क्रांति का मूल्य लिखकर नैतिक न्याय का प्रतिरोपण किया, परंतु इतिहासकार को ऐसी उलझनों में पड़कर नैतिक न्याय नहीं देना चाहिए। सभी सरकारी नीतियां कुछ लोगों की भलाई तथा दूसरों के लिए कष्टकारी होती हैं। यह स्वाभाविक ऐतिहासिक तथ्य है। भारत में जमींदारी उन्मूलन यदि जन सामान्य के लिए हितकर सिद्ध हुआ तो जमींदार वर्ग के लिए कष्टकारी था। वकहार्ट ने प्रगति के शिकारियों पर दुखद संवेदना व्यक्त की है। वास्वेल के अनुसार सभी के अप्रसन्न रहने की अपेक्षा कुछ का प्रसन्न होना अच्छा है। ऐसे तथ्यों पर नैतिक न्याय का अभिप्राय इतिहास को किसी अन्य ऐतिहासिक मानदंड के मूल्य के समक्ष नतमस्तक होना पड़ेगा। नैतिक न्याय यद्यपि ऐतिहासिक व्याख्या का अभिन्न अंग है, परंतु यह ऐतिहासिक गवेषणा का मूल उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान आज पूर्ण स्वतंत्र विषय है। आधुनिक समाज इतिहासकारों से अतीत संबंधी समाजोपयोगी व्याख्या की आशा करता है। आधुनिक समाज के लोग यह नहीं चाहते कि इतिहासकार नैतिक न्याय के माध्यम से किसी अतीतकालिक व्यक्ति, घटना, व्याख्या, संस्था की निंदा अथवा प्रशंसा करें। विशिष्ट ज्ञान वाले इतिहासकार दूसरों की आलोचना अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए करते हैं। आचार शास्त्र का स्वरूप स्थानीय तथा काल विशेष के संदर्भ में होता है, जबकि इतिहास नियम का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। इस संबंध में मॉन्टेन की अभिव्यक्ति यथार्थ प्रतीत होती है। मनुष्य अद्भुत, अस्पष्ट तथा भिन्नतायुक्त विषय है। उसके संबंध में न्याय देना सरल नहीं। रीति रिवाज तथा विचारों की अस्थिरता के कारण मैंने अनुभव किया है कि सर्वश्रेष्ठ लेखकों द्वारा उपयुक्त रचना का प्रयास एक भूल है। इतिहासकार अपने नैतिक न्याय के द्वारा समाज के एक वर्ग को संतुष्ट कर सकता है। इतिहासकार से अपेक्षा की जाती है कि वह संपूर्ण समसामयिक समाज तथा युग का प्रतिनिधित्व करे। इस काल की अभिव्यक्ति यथार्थ प्रतीत होती है कि नैतिकता का इतिहास इतिहास का वास्तविक अंश नहीं है। इतिहास लेखन अनुशासनबद्ध है। यदि कुछ लोग कहे कि मानवीय अनुशासन का पालन ऐसी स्वतंत्रता से किया जाना चाहिए कि व्यक्ति तथा स्पष्ट सिद्धांतों के होते हुए भी उनका व्यक्तिगत कथन सर्वोपरि अस्तित्व रखता है, तो उसे यथार्थ न स्वीकार करके ऐसे लोगों को इतिहास के समाज से निष्कासित कर देना चाहिए। इतिहास अनुशासन के अंतर्गत इतिहासकार इतना स्वतंत्र नहीं है कि वह कुछ सिद्धांतों का पालन करे तथा अपनी सुविधा अनुसार कुछ का परित्याग कर दे। नैतिक न्याय पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत होता है। इतिहास अनुशासन में इसके लिए स्थान नहीं है। पृष्ठ संख्या 172। यह व्यक्तिगत ही नहीं अपितु विषय निष्ठ होता है। इतिहासकार से समाज वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करता है। अतः नैतिक न्याय इतिहास के विषय वस्तु नहीं है। समीक्षा। एक्टन ने इतिहासकार को न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया है। एक न्यायाधीश के रूप में इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य है अतीत के ऐतिहासिक व्यक्तियों पर कठोर निर्णय देकर वर्तमान को नियंत्रित करना तथा भविष्य का मार्गदर्शन करना। इतिहास को सर्वोच्च न्यायालय बनाने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत सतत प्रयास किया। अधिकांश इतिहासकारों ने एक्टन के विचारों को स्वीकार नहीं किया है। प्रत्येक युग में समसामयिक सामाजिक रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार इतिहास लेखन की अनुभूति की गई। इतिहासकार का दृष्टिकोण मूल्य संपृक्त होता है। समसामयिक मूल्यों के परिवेश में अतीत का निरूपण यथोचित नहीं है। एक मृत व्यक्ति को प्रत्येक युग की दंड विधा द्वारा दंडित करने को न्याय की संज्ञा देना उचित नहीं है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के साथ ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व में भी परिवर्तन होता रहता है। अकबर की धार्मिक उदारवादी नीति तथा दीन इलाही की आलोचना समकालीन इतिहासकार बदायूनी ने समसामयिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में की है। पाश्चात्य इतिहासकार स्मिथ ने भी दीन इलाही को सम्राट अकबर की मूर्खता का परिचायक कहा है। 20वीं सदी में भारतीय समाज के लिए धार्मिक उदारता आवश्यक हो गई। सामाजिक मूल्यों के परिवेश में एसआर शर्मा ने दीन इलाही को राष्ट्रीयता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति कहा है। प्रत्येक युग में सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में ऐतिहासिक घटनाओं को उपयोगिता तथा अनुपयोगिता हो सकती है। इसी प्रकार इतिहास का नैतिक न्याय मूल्य संपृक्त होता है। इतिहास में व्यक्तिगत जीवन संबंधी तथ्यों पर इतिहासकार को नैतिक न्याय नहीं देना चाहिए। नेपोलियन, बोनापार्टा, शेरशाह तथा अकबर का कार्य व्यक्तिगत जीवन में निंदनीय हो सकता है, परंतु राज्य के हित में उचित था। मेकियावेली ने भी कहा है कि उद्देश्य की प्राप्ति में उचित तथा अनुचित साधनों का औचित्य होता है। आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक को व्यक्तिगत जीवन संबंधी बातें उसकी उपलब्धियों को कम नहीं कर सकती हैं। इतिहासकार द्वारा प्रस्तुत व्याख्या का अभिप्राय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इतिहास में नैतिक न्याय इतिहासकार को विषय निष्ठा के लिए विवश करता है। इतिहास अध्ययन के कुछ अपने विशिष्ट नियम तथा अनुशासन में आस्थावान इतिहासकार को ही इतिहास लेखन करना चाहिए। नैतिक न्याय इतिहास क्षेत्र के बाहर है। एक्टन ने भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इतिहास में नैतिक न्याय की अनावश्यकता अनुभव की थी। इतिहास अनुशासन की उपेक्षा करने वाले इतिहासकार को समाज से निष्कासित कर देना चाहिए।